ಅಮಲಿನ ಮನ್ ಯಹ್ದಿಲ್ಲಾಹು ಫಲಾ ಮುರ್ಲಿಲ್ಲ ಲಹು ವಮನ್ ಯುರ್ಲಿಲ್ಹು ಫಲಾ ಹಾದಿಯ ಲಹ್. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله مولانا العظيم صدق. ಬುಜುರ್ಗೋ ಅವ್ರ ಭಾಯಿಯೋ, ಹಮಾರಿ ಯ ಜಿಂದಗಿ ಅಮಲ್ ಕಿ ಜಿಂದಗಿ ಹೈ, ಅಮಲ್ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಹೈ, ಫಲ್ ಪಾನೆ ಕಿ ಜಿಂದಗಿ ಆಗೆ ಆ ರಹಿ ಹೈ. ಇನ್ಸಾನ್ ಕಿ ಜಿಂದಗಿಯಾಂ ತೀನ್ ಹೈ. ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಆನೆ ಸೇ ಪೆಹ್ಲೇ ಹಮಾರಿ ಏಕ್ ಜಿಂದಗಿ ಹೈ, ವೋ ಪಢನೆ ಕಿ ಜಿಂದಗಿ ಹೈ. ಫಿರ್ ಯೇ ದೂಸರಿ ಜಿಂದಗಿ ಹೈ, ಪಢೇ ಕೆ ಮುತಾಬಿಕ್ ಅಮಲ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಜಿಂದಗಿ ಹೈ. ಫಿರ್ ಏಕ್ ಜಿಂದಗಿ ಆಗೆ ಆ ರಹಿ ಹೈ, ಅಮಲ್ ಕೆ ಮುತಾಬಿಕ್ ಫಲ್ ಪಾನೆ ಕಿ ಜಿಂದಗಿ ಹೈ. ಇನ್ಸಾನ್ ಕಿ ತೀನ್ ಜಿಂದಗಿಯಾಂ ಹೈ. ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಆನೆ ಸೇ ಪೆಹ್ಲೇ ಜೋ ಹಮಾರಿ ಜಿಂದಗಿ ಹೈ, ಇಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಮೇ ಸೇ ಹರ್ ಕೋಯಿ ಜಾನ್ತಾ ಹೈ. ಜಬ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ಶಾನುಹು ಅಮ್ಮ ನವಾಲುಹು ನೇ ಹಜರತ್ ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತು ವಸಲಾಮ್ ಕೋ ಪೈದಾ ಕಿಯಾ ಹೈ, ತೋ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಉನ್ಕಿ ಪೀಠ್ ಸೇ ಉನ್ಕಿ ಅಚ್ಚಿ ಬುರಿ ಕಯಾಮತ್ ತಕ್ ಕಿ ಸಾರಿ ಔಲಾದ್ ನಿಕಾಲಿ ಗಯಿ ಹೈ, ತಮಾಮ್ ಇನ್ಸಾನ್ ವಜೂದ್ ಮೇ ಲಾಯೆ ಗಯೆ. ಔರ್ ಯೇ ಮಜ್ಮೂನ್ ಕುರಾನ್ ಕರೀಮ್ ಮೇ ಹೈ. ಉಸ್ ವಕ್ತ ಹಮಾರೇ ಯೇ ಬಾಡಿಯಾಂ ಹಮಾರೇ ಜಿಸ್ಮ್ ಅಜಿಸಾದ್ ನೀ ಪೈದಾ ಹೋಯೆ ಥೆ, ಸಿರ್ಫ್ ರೂಹೇ ಪೈದಾ ಹೋಯಿ ಥಿ. ಸಿರ್ಫ್ ರೂಹ್ ಕ್ಯಾ ಚೀಜ್ ಹೈ? ಜಿಸ್ಮ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹಮಾರಾ ವಜೂದ್, ಇಸ್ಕೋ ತೋ ಹಮ್ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಜಿಸ್ಮ್ ನಾ ಹೋ ಔರ್ ಬಗೈರ್ ಜಿಸ್ಮ್ ಕೆ ಹಮಾರಿ ರೂಹ್ ಜೋ ಅಸಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಹೈ, ಅಸಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಹಮಾರಿ ರೂಹ್ ಹೈ. ಜಿಸ್ಮ್ ಕೆ ಬಗೈರ್ ಸಿರ್ಫ ರೂಹ್ ಕ್ಯಾ ಚೀಜ್ ಹೈ? ಯೇ ಉನ್ ತೀನ್ ಸವಾಲೋ ಮೇ ಸೇ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಥಾ ಜೋ ಮಕ್ಕಾ ಕೆ ಮುಶ್ರಿಕೀನ್ ನೇ ಮದೀನಾ ಕೆ ಯಹೂದಿಯೋ ಸೇ ಮಶೋರಾ ಕರ್ಕೆ ನಬೀ ಪಾಕ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸೇ ಕಿಯೇ ಥೆ, ಯೇ ಜಾನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕೆ ಯೇ ಸಚ್ಚೆ ನಬಿ ಹೈ ಯಾ ವೈಸೆ ಹಿ ಬನಾವಟ್ ಹೈ. مکے سے باقاعدہ مدینے آدمی بھیجے گئے تھے, مدینہ میں یہودی تھے, ان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی کتابوں کا بہت زیادہ علم ہے, قرآن تو نازل ہوا ہی نہیں تھا, اور ہوا تھا تو مانتے نہیں تھے, لیکن قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان میں تورات اور انجیل جیسی بھی تھی بگڑی ہوئی, تحریف کی ہوئی, مگر وہ تھیں اور آج بھی ہیں. اور آج بھی تورات و انجیل کا علم عیسائیوں سے زیادہ یہودی رکھتے ہیں. آج بھی یہودیوں کے پاس تورات کا علم زیادہ ہے, عیسائیوں کے پاس تو کچھ نہیں رکھا. وہ تو صرف ایک مسئلہ جانتے ہیں کہ خدا تین ہیں اور تین ایک ہیں, بس اتنا ہی جانتے ہیں. عیسائی تو بس یہی ایک مسئلہ جانتے ہیں کہ خدا تین ہیں اور وہ تین ایک ہیں. اس سے آگے عیسائیوں کے پاس تو ان کی کتابوں کا بھی کچھ علم نہیں. لیکن یہودیوں میں آج بھی بڑے بڑے اپنے مذہب کے جاننے والے ہیں, اور اسلام کے جاننے والے بھی ہیں. اسلام کے جاننے والے بھی یہودیوں میں بڑے بڑے ہیں. یورپ اور امریکہ میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان میں جو اسلامک اسٹڈیز ہے اس کے جتنے پروفیسر ہوں گے 99% یہودی پروفیسر ہوں گے. اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر عیسائی یہودی ہوں گے. اور جتنے مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ, کیا کہتے ہیں پتہ نہیں لفظ بھی کیا ہے, اورینٹلسٹ کیا ہے بولو, اورینٹل کہتے ہیں مستشرق, مجھ سے تو یہ لفظ بھی نہیں بولا جاتا ہے. اور جن مستشرقین نے اسلام پر اعتراضات میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ کتب خانہ بھر دیا ہے, وہ سب اسلام کے خلاف کتابیں جو لکھی گئیں وہ سب ان یہودیوں کی لکھی ہوئی. عیسائی تو کوئی گننے سے کوئی شاید کوئی ملے گا, باقی وہ سب یہودیوں کی لکھی ہوئی. اور کسی مذہب کے خلاف کتاب لکھنا, جب تک اس مذہب کی پوری واقفیت نہ ہو نہیں لکھ سکتا آدمی. تو اسلام کے بارے میں بھی ان یہودیوں کے پاس بہت زیادہ علم ہے. کرو
Assalamualaikum brothers, we have a car here, BEST TVRL. It's blocking quite a few cars. It's parked right here on my left hand side here. So if you are owner of the car, can you please go move the car? BEST TVRL. Jazakallah.
تو مکہ والوں نے ان یہودیوں کے پاس, ایک بات اور یاد آئی, حدیث شریف کا ایک انڈیکس تیار کیا ہے ایک یہودی نے جس کا نام ہے وینسک, EI کچھ شروع میں لگتا ہے, پتہ نہیں کیا EI ہے, اس کا نام وینسک, یہودی ہے. اس نے حدیث شریف کا انڈیکس تیار کیا ہے, اس کا نام رکھا ہے اس نے المعجم المفارس لالفاظ الحدیث الشریف, اور حدیث کی 14 کتابوں کا انڈیکس اس نے تیار کیا ہے. آج کوئی دارالعلوم ایسا نہیں ہے جس میں یہ کتاب سے فائدہ نہ اٹھایا جاتا, اور وہ یہودی ہے. اور اس نے لکھا ہے کہ مسند احمد, ایک بڑی کتاب ہے امام احمد کی لکھی ہوئی, اس نے لکھا ہے کہ میں نے مسند احمد 14 مرتبہ پڑھی ہے پوری. آج دنیا میں کوئی شیخ الحدیث تم ایسا نہیں لا سکتے جو یہ کہے کہ میں نے مسند احمد ایک مرتبہ پوری پڑھی ہے. ایسا شیخ الحدیث لانا مشکل ہے. وہ نالائق کہتا ہے میں نے 14 مرتبہ پوری پڑھی ہے. کیوں؟ اسے انڈیکس بنانا ہے. انڈیکس بنانے کے تو بار بار پڑھنا پڑے گا. تو مکہ والوں نے باقاعدہ وفد بھیجا مدینہ میں یہودیوں کے پاس کہ تم لوگ آسمانی کتابوں کے بڑے عالم ہو, ہمارے یہاں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے, ہم ان کو جانچنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کچھ سوالات بتاؤ. तो उन यहूदियों ने तीन सवाल बताए कि पूछो उनसे, एक तो उनसे पूछो कि वो चंद नौजवान जो बादशाह से डरकर जंगल में निकल, पहाड़ों में निकल गए थे और एक गार में जाकर वो सो गए थे और कई साल तक सोते रहे थे, फिर बेदार हुए थे, असहाबे कहफ, गार वालों का क्या वाकया है, वो कौन नौजवान थे, क्यों भागे थे, कहाँ छुपे थे, कितने दिन सोए थे, उनका वाकया बताओ। आज तो ये वाकया आम हो गया है, कुरान ने जब से नाजिल किया वाकया आम हो गया है और इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटेनिक क्या है लाहौल वाला कुवत लफ्ज भी नहीं बोला जाता है, क्या ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका में ये बाकायदा हेडिंग है, सेवन स्लीपर्स, और पूरा वाकया वहां है। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने सवाल किया था, इस वाकया को यहूदियों के अलावा कोई नहीं जानता। दूसरा सवाल उन्होंने कहा किया कि एक बादशाह गुजरा है जो मशरिक में, ईस्ट में जहां तक आबादी थी वहां तक गया है, और वेस्ट में जहां तक आबादी थी वहां तक गया था। उस वक्त जहां तक आबादी थी, सारी जमीन तो भरी नहीं थी, तो ईस्ट में जहां तक आबादी थी वहां तक गया था और वेस्ट में जहां तक आबादी थी वहां गया था। आज तो बहुत आसान है, 24 घंटे में पूरी जमीन का राउंड ले लीजिए, लेकिन उस वक्त इतना आसान नहीं था इतनी दूर तक सफर करके जाना। उसका क्या वाकया, वो कौन बादशाह है, वही ज़ुल्करनैन। दो ज़ुल्करनैन का लफ्जी तर्जमा है दो सिंग वाला, दो सिंग तो बैल और भैंस के होते हैं, फिर उसको दो सिंग वाला क्यों कहते हैं, वो दो सिंग ये था, ईस्ट में जहां तक आबादी थे वहां तक गया था, एक सिंग ये है, और वेस्ट में जहां तक आबादी थी वहां तक गया था, दूसरा सिंग ये है। ये ज़ुल्करनैन दो सिंगों वाला यानी दो किनारों वाला, यहां तक भी आखिर तक गया, यहां भी आखिर तक गया, उसका क्या किस्सा है। कोई उस बादशाह के सिंग नहीं थे, वो कोई भैंस और बैल थोड़े ही थे जो दो सिंग होंगे उसके, या कोई सिंघाड़ा थोड़ा ही था जो उसके सिंग हो। सिंघाड़ा एक फल होता है ना, उसके भी सिंग होते हैं, वो कोई सिंघाड़ा थोड़े ही था, या कोई बैल और भैंस थोड़े ही था। दो सिंग, दो सिंग से मजाज मुराद है, इश्तेहारा मुराद है कि दुनिया के दो किनारे, ईस्ट में यहां तक और वेस्ट में यहां तक। उसको कौन बादशाह गुजरा है, उसका क्या वाकया है। और तीसरा सवाल ये बताया था कि रूह क्या चीज है, जिस्म नहीं, जिस्म के बगैर रूह बताओ क्या है। आज तो अगर कोई रूह को पूछे कि भाई रूह क्या है, तो कहेंगे जाए ये सब बैठे हुए, ये सब जी रूह है, रूह वाले हैं, इनके नाक के पास कान ले जाकर सुन आवाज आ रही होगी खर 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 खर, ये रूह है। लेकिन जिस्म नहीं, बगैर जिस्म के स्पिरिट बताओ रूह क्या चीज है। और उन यहूदियों ने यह भी कहा था कि देखो इन, अगर वो सच्चे नबी हैं तो इन दो तीन सवालों में से दो के जवाब देंगे, एक के नहीं देंगे, ये भी कह दिया था उन्होंने। चुनांचे वो वफद वापस आया और उसने ये तीन सवाल किए गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे कह दिया कि मैं तुम्हें इसका जवाब कल दूंगा। ये ख्याल करके कि वही आ जाएगी, हुजूर से सवाल हुआ, सवाल के मुताबिक अल्लाह की वही आएगी और हुजूर जवाब देंगे। लेकिन अल्लाह का करना कि 15 दिन तक हजरत जिब्रील आए नहीं। अब मक्का में बड़ा हंगामा के बड़े नबी बनते थे, अब जब सवाल हुए तो बगले झांकते हैं, जवाब नहीं बन रहा। हुजूर को बड़ा सदमा हुआ, ऐसे प्रोपेगंडा जब हो इसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा और झूठा प्रोपेगेंडा हो तो आदमी को सदमा होता ही है। 15 दिन के बाद हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और तीनों सवालों के जवाब लाए और ये मसला भी लाए, वला तकूलन लशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। हुजूर को ये मसला बताया कि आप आइंदा कभी ये न कहें कि ये काम मैं आइंदा कल टुमारो में करूंगा, ये न कहें आप। वला तकूलन लशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन, हाँ इंशा अल्लाह बढ़ा कर कह सकते हैं, इल्ला यशा अल्लाह यानी आप यूं कहें कि इंशा अल्लाह मैं कल आऊंगा, इंशा अल्लाह मैं आपको कल दूंगा, इंशा अल्लाह मैं कल फोन करूंगा, अगर अल्लाह चाहें ये तो कह सकते हैं। अब अल्लाह की मशीयत पर मुअल्लक कर दिया और अल्लाह की मशीयत का किसी को पता नहीं। अगर कोई कसम खाए और कसम के साथ इंशाअल्लाह लगा दे तो कसम नहीं होगी। अगर कोई बीवी को तलाक दे और तलाक देने के साथ इंशाअल्लाह लगा दे तलाक नहीं होगी। क्यों? अल्लाह ने चाहा या नहीं चाहा उसको क्या पता किसी को, अल्लाह की मशीयत का किसी को कुछ पता नहीं। फरमाया कि वला तकूलन लशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता, और याद करें आप अपने परवरदिगार को जब उसको भूल जाएं। यानी कभी एक बात कही और इंशाअल्लाह कहना याद नहीं रहा, भूल गए, तो जब याद आए इंशाअल्लाह कह लो। वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता, और याद करें आप अपने परवरदिगार को जब उसको भूल जाएं। वकुल असा अन यहदियनी रब्बी लअक़रब मिन हाज़ा रशदा, और इन कुफार से ये कहें कि अल्लाह ने तुम्हारे सवाल के मुझे जवाब बतला दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इससे भी ज्यादा काम की बातें मुझे बताएगा। चुनांचे सूरे कहफ में गार वालों का वाकया जिक्र किया 2.5 रुकू में और पूरा तफसीली वाकया बताया, और उसी सूरत के खत्म पर ज़ुल्क़रनैन का वाकया भी बयान किया जो आज कुरान करीम में पढ़ा गया। और रूह के बारे में इससे पहले वाली सूरत बनी इसराइल में आयत नाजिल की, वयसअलूनका अनिर रूह, लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। रूह सिर्फ इंसान की रूह नहीं, बस रूह, कोई भी रूह, किसी भी हैवान की रूह, जिस्म नहीं, जिस्म के बगैर किसी भी हैवान की रूह। देखो हमारे जिस्म के साथ तो हमारी रूह मौजूद है, नहीं जिस्म के बगैर भी रूह मौजूद है, और हर हैवान की रूह जब से पैदा की गई है वो बदन के साथ जुड़ने से पहले से वो रूह मौजूद है। तो लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, वयसअलूनका अनिर रूह, कुल अर रूह मिन अम्र रब्बी, आप जवाब दीजिए, रूह मेरे परवरदिगार के हुक्म से एक चीज है। अल्लाह की शान ये है, कुरान में जगह जगह बयान की गई है, वइज़ा क़ल्ला अम्रन फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फ़यकूनु। अल्लाह के कुदरत का मामला ये है कि जब वो कोई चीज़ तय करते हैं तो उसको हो जा कहते हैं, वो हो जाती, यानी अल्लाह को हो जा कहना नहीं पड़ता, अल्लाह का इरादा ही होते ही वो चीज़ वजूद में आ जाती है। ये जो अल्लाह के कुन कहने से, हो जा कहने से, आर्डर फरमाने से जो चीज़ वजूद में आ जाती है और मुस्तकिल एक चीज़ मौजूद हो जाती है, उसका नाम रूह है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, और जरा खोल कर समझाओ. फरमाया वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और नहीं दिए गए हो तुम इल्म में से मगर जरा सा. जवाब दिया कि इससे आगे तुम्हें समझाना मुमकिन नहीं, क्योंकि हर मसले को समझने के लिए लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, एक मुस्तवा इल्म का चाहिए, एक मेयार जहन का चाहिए. अगर वो लेवल नॉलेज का वो लेवल है तो वो मसला उसे समझाया जा सकता है, और अगर इल्म की वो सतह उसके पास नहीं है तो उसको आप नहीं समझा सकते. हिसाब, हिसाब के बड़े बारीक बारीक गहरे मसले हैं, और यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर तालिब इल्मों को हिसाब पढ़ाता है वो सारे मसले समझाता है, लेकिन एक कुंदे नातराश को वो मसला समझाना हो तो बड़ा मुश्किल है, नहीं समझाया जा सकता. तो मसला तो समझाने के काबिल है, यूनिवर्सिटी में क्लास में प्रोफेसर समझाता है, मगर इसको नहीं समझाया जा सकता. इसके दिमाग में वो लेवल नहीं है इल्म का, नॉलेज का, कि वो मसले को समझ सके. साइंस की बहुत सी हकीकतें हैं, जो साइंस की तालीम जहाँ दी जाती है वो सारी खोल कर समझाई जाती हैं तालिब इल्मों को, लेकिन एक हल चलाने वाले को वो हकीकत समझाना बैठे तो कैसे समझा देंगे. तो कोई भी मसला हो उसको समझने के लिए एक सतह, इल्म की एक सतह चाहिए. उस सतह पर अगर है, उसकी मिसाल लो, किसी भी चीज को देखने के लिए आंख में कुदरत चाहिए. अगर आंख में कुदरत है आप देख सकेंगे, और कुदरत नहीं है तो नहीं देख सकेंगे. वो जो चीज है वो मरई है, देखने के काबिल है, मगर मेरी आंख में ताकत होगी जबी तो मैं देखूंगा. ये पंखे हिल चल रहे हैं, मेरी आंख उसे देख रही है क्योंकि मेरी आंख में इसे ताकत है, मगर इस पूरे हाल में हवा भरी हुई है और उस भरी हुई हवा को ये पंखड़ियां हिलाती हैं, वो हवा तो मुझे नजर नहीं आती. तो कोई हवा तो मरई है, वो तो दिखने वाली चीज है, मगर मुझे इसलिए नहीं दिखती कि मेरे आंख में उसको देखने की ताकत नहीं. देखो मेरे भाइयों, इस मसले को समझो. तीन मखलूकात इस जमीन पर एक साथ बसी हुई हैं. इस हमारी इस जमीन पर इस वक्त तीन मखलूकात एक साथ बसी हुई, हम इंसान, जिन्नात और फरिश्ते मलाइका. एक फरिश्ते आसमानों के हैं, एक फरिश्ते जमीनों के हैं. और वो मसला मैंने बतलाया था ना कि अल्लाह का हुक्म आया था आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद कि इनको सजदा करो यानी सरेंडर हो. वो जमीनी मखलूकात को हुक्म था, और जमीनी मखलूकात में जो फरिश्ते थे उनको हुक्म था सरेंडर हो. जिन्नात को भी हुक्म था, इंसान तो है ही नहीं, अब पहला इंसान वजूद में आया है. इन तीन मखलूकात में सबसे ज्यादा कसीफ हम हैं. कसीफ, कसीफ माने थिक, THIK, थिक दबा, मोटापा, थिक. कसीफ हम हैं, हमसे हमारे बाद जिन्नात हैं, हमसे लतीफ हैं, मगर वो भी कसीफ हैं, और जिन्नात से ज्यादा लतीफ जमीनी फरिश्ते हैं. और ये चारों मखलूकात, आग पानी हवा और मिट्टी, तीनों, ये तीनों मखलूकात आग पानी हवा और मिट्टी से बनी. आग पानी हवा और मिट्टी, हम बने हैं, और मिट्टी गालिब है और मिट्टी थिक है, तो हम उसमें दबीज हैं. और जिन्नात जो हैं ये भी आग पानी हवा मिट्टी से बने हैं, मगर आग गालिब है और आग मिट्टी से लतीफ है, लिहाजा जिन्नात हमसे लतीफ हैं. और जमीनी फरिश्ते जो हैं आग पानी हवा मिट्टी, इन चारों के मिलकर उसमें से एक स्टीम पैदा होती है, उस स्टीम से जमीनी फरिश्ते बनाए गए. तो जब चारों अलग हुए उसमें से स्टीम, तो वो और लतीफ हुए. असल जो मसला समझाना वो समझो, हमें न जिन्नात नजर आते हैं न फरिश्ते नजर आते हैं. यहाँ हैं फरिश्ते, हमें नजर नहीं आते. यहाँ हों हैं जिन्नात, हमें नजर नहीं आते. اور جنات کو ہم نظر آتے ہیں مگر ان کو فرشتے نظر نہیں آتے. زمینی فرشتے جو ہیں وہ جنات کو نظر نہیں آتے مگر ان کو انسان نظر آتے ہیں, اور زمینی فرشتوں کو دونوں نظر آتے ہیں, جنات بھی نظر آتے ہیں اور انسان بھی نظر آتے ہیں, اور نہ ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں نہ جنات کو نظر آتے ہیں. جیسے آپ کی گاڑیوں پر کانچ ہوتا ہے, اس پر ایک کاغذ ہوتا ہے, ایک طرف سے نظر آتا ہے دوسری طرف سے نظر نہیں آتا, اندر بیٹھو باہر نظر آتا ہے باہر سے اندر نظر نہیں آتا, لیکن رات میں اندر آپ بتی جلا لیں تو باہر سے اندر نظر آتا ہے اندر سے باہر نظر نہیں آتا. اسی طریقے پر سمجھو کہ ہم ہی نظر آتے ہیں, یا ہمارے جیسی جو کثیف چیزیں وہ نظر آتی ہیں, پنکھا نظر آتا ہے, چھت نظر آتی ہے, لیکن جو ہم سے لطیف ہیں اس پورے حال میں جو ہوا بھری ہوئی ہے وہ ہم سے لطیف ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. آگ ہمیں چولہے میں جلتی ہوئی آگ نظر آتی ہے, اور یہ بجلی کا تار جا رہا ہے اس کے اندر آگ ہے ہمیں نظر نہیں آتی. یہ بجلی کے جو تار جا رہے ہیں سڑک پر ان پہ بھی تو آگ جا رہی ہے, اور وہی تو آگ آگے جا کر بجلی بنتی ہے, وہ نظر ہمیں نہیں آتی ہے. اور چولہے میں جلتی ہوئی آگ نظر آتی ہے, کیوں؟ چولہے کی آگ کثیف ہے اور اس تار میں جو آگ جا رہی ہے وہ لطیف ہے. یہ اتنی ساری مثالیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ جو کثیف ہے اس کو لطیف نظر نہیں آئے گا, اور جو لطیف ہے اسے کثیف نظر آئے گا. تو فرشتوں کو جنات بھی نظر آتے ہیں انسان بھی نظر آتے ہیں, جنات کو فرشتے نظر نہیں آتے انسان نظر آتے ہیں, اور انسان کو انسان ہی نظر آتے ہیں جنات اور فرشتے نظر نہیں آتے. یہ عام حالات میں, عام حالات میں کبھی کبھی جن بھی نظر آتا ہے, کبھی کبھی جن بھی نظر آتا ہے, اور کبھی کبھی فرشتے بھی نظر آتے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس تو فرشتے آتے ہیں, اور زمین کے فرشتے نہیں آسمان کے فرشتے آتے ہیں اور انبیاء کو نظر آتے ہیں. آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ تو نور سے بنے ہیں, یہ جو زمین کے فرشتے ہیں وہ عناصر چار آگ پانی ہوا مٹی مل کر اس میں سے جب اسٹیم پیدا ہوتی ہے اس اسٹیم سے بنے ہیں, اور آسمان کے فرشتے وہ تو نور سے بنے ہیں, وہ تو اور لطیف ہیں, لیکن وہ کبھی انسانوں کو نظر آتے ہیں, جنات بھی کبھی نظر آتے ہیں, لیکن عام حالات کی بات میں کہہ رہا. تو روح ایک لطیف چیز ہے, جب وہ جسم کے ساتھ ملتی ہے تو اب کثیف ہو گئی, اب آپ کو بکری بھی نظر آئے گی, گھوڑا بھی نظر آئے گا, چوہا بھی نظر آئے گا, انسان بھی نظر آئے گا, سب نظر آنے لگیں گے. لیکن جب وہ روح جسم کے سے الگ ہے تو کیسے نظر آئے گی, وہ تو لطیف چیز ہے, لیکن روح کو ہم نظر آئیں گے. ہم کثیف ہیں تو روح کو ہم نظر آئیں گے مگر ہمیں روح نظر نہیں آئے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھنے کے لیے آنکھ میں طاقت چاہیے, سامنے والی چیز چاہے اس میں ویزیبلٹی ہو مرئی ہو مگر آنکھ میں طاقت نہیں ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے طور پر اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی, اللہ کا کلام سنا, تو اتنا اشتیاق بڑھا کہ وہ درخواست کر بیٹھے, رب ارینی انظر الیک, پروردگار ایک جلوہ دکھا دیجئے. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا, لن ترانی, تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں, نہیں, اللہ تو مرئی ہیں, اللہ دیکھ سکتے ہیں, اور قیامت کے بعد جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, اور ہفتے میں ایک مرتبہ نصیب ہوگا. یہ ہفتہ دنیا کا ہے پرویک, آخرت میں تو سورج رات دن ہے ہی نہیں, مگر دنیا میں ایک ہفتہ جتنی دیر میں گزرتا ہے اتنے اتنے وقفے کے ساتھ جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, زیارت ہوگی. معلوم اللہ تو دیکھ سکتے ہیں مگر اس دنیا میں ہماری آنکھوں میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. अल्लाह तो बहुत दूर की बात है, हम तो हवा नहीं देख सकते, हम तो जिन्नात नहीं देख सकते, हम तो ज़मीन के फरिश्ते नहीं देख सकते, हम तो आसमान के फरिश्ते नहीं देख सकते, अल्लाह तो वराउल वरा हैं, उनको क्या देख लेंगे हम। तो जवाब यह आया, लन तरानी, तुम्हारे अंदर मुझे देखने की सकत नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। तो जैसे किसी भी चीज़ को देखने के लिए आँख में ताकत चाहिए मेरे भाइयों, इसी तरह किसी भी मसले को समझने के लिए लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। अगर वो इल्म की सतह हासिल है तो वो मसला समझ सकते, वरना नहीं समझ सकते। तो कुरान ने बस इतना मुजमल जवाब दिया, कुल कुल यस अलू नकानी रूह, कुल अर रूह मिन अम्रे रब्बी, आप कह दीजिए कि मेरे परवरदिगार के हुक्म से एक चीज वजूद में आई है, उसका नाम रूह है। वमा उती तुम मिन इल्म इल्ला कलीला, और नहीं दिए गए हो तुम इल्म से मगर थोड़ा सा। तुम्हारे पास कितना इल्म है, जरा सा तो इल्म है। तुम कहो कि हमें तफसील से समझाओ, इससे आगे तुम्हें क्या तफसील से समझाएं, उस मसले को समझने की तुम्हारे पास में इल्मी सत्ता ही दिमाग में नहीं है जो तुम समझ सको। ये वो तीन बातें हैं कि दो के जवाब तफसीली देंगे, एक का जवाब नहीं देंगे। वो ये बात आई कि उसका जवाब नहीं दिया गया। तो मेरे भाइयों, मैं असल मजमून तो ये समझा रहा था कि हमारे तीन वजूद हैं, वजूद तो एक ही है, हम तीन दुनिया जहानों में हैं, हमारा वजूद तीन जहानों में से है। एक जब आदम अलैह सलाम को पैदा करने के बाद में तमाम इंसानों की रूहें पैदा की गई, एक वो हमारा है और उसका नाम है आहदे अलस्त। जब अलस्त बे रब्बिकुम का सवाल किया गया था, वो वर्ल्ड और एक ये दुनिया जिसमें हम इस वक्त हैं, और एक दुनिया आगे आ रही है। पिछली दुनिया पढ़ने के लिए थी, पिछली जिंदगी पढ़ने के लिए थी। अल्लाह ने तमाम इंसानों को पैदा करके उनको अपना दीदार करवाया था, तजल्ली फरमाई थी और अपने आप को दिखाकर अपनी पहचान करवाई थी। और कोई चीज दिखा दी जाए तो ये इल्म तो सबसे ज्यादा कवी इल्म होता है। चुनांचे जब सवाल किया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं, तो सबने बयक जुबान कहा था, भला क्यों नहीं। जो चीज आंखों से देख ली है उसका कैसे इनकार करेगा। रब को पहचान लिया सबने। इस दुनिया में अल्लाह अपनी तजल्ली फरमाए और तजल्ली फरमा करके अपनी पहचान कराए, यहाँ मुमकिन नहीं। यहाँ इंसान जो जिस्म की दो आँखें हैं, इन दो आँखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने यही फरमाया था। लेकिन अहदे अलस्त में जो अल्लाह को देखा था तो रूह की आँखों ने देखा था, और रूह की आँखें आज भी अल्लाह को पहचान सकती हैं। हमारी रूह की जो आंखें हैं वो आज भी अल्लाह की मारिफत हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की पहचान से कर सकते हैं। ये सब बंदे हैं, बैठे हैं, ये सब अल्लाह को पहचानते हैं, और सब ऐसा पहचानते हैं जैसा जिस्म की आंखों से देखकर हम कोई चीज पहचानते हैं और उसका यकीन होता है, उससे ज्यादा यकीन हमें अल्लाह ताला का है। क्यों हम अल्लाह ताला को अपनी रूह की आंखों से देखते हैं और पहचानते हैं। फिर इस दुनिया में आए, इस दुनिया में आने के बाद में अब वो परवरदिगार और पालनहार जिसको पहचान करके आए हैं और जिसकी रुबूबियत का इकरार करके आए हैं, उसको उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। ये दुनिया जिसमें हम इस वक्त हैं, ये अमल की दुनिया है, इसमें अल्लाह को जो पहचान करके आए हैं तो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। बेटा बाप को पहचानता ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बेटा है जानता है कि मेरे अब्बा हैं, और वो इताअत शियार फरमान बरदार बेटा है, तो जब उसने बाप को बाप जान लिया तो अब हमेशा बाप की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, ऐसे काम करेगा, ऐसे बर्ताव करेगा कि बाप खुश रहे, ऐसे हरकतें नहीं करेगा कि बाप नाराज हो जाए। तो जब हम अल्लाह को पहचान चुके और पहचान कर इस दुनिया में आए हैं, तो इस दुनिया में हमें वो काम करने हैं कि मौला खुश रहे, राजी रहे। कोई ऐसी हरकत हमें नहीं करनी है जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए। वो क्या है, किन कामों से अल्लाह राजी होते हैं, किन कामों से अल्लाह नाराज होते हैं, ये सब बातें अल्लाह ने अपने नबियों के जरिए, वही के जरिए, किताबों के जरिए इंसानों को बता दी हैं। कोई चीज छुपा के नहीं रखी। फिर एक वक्त आएगा कि इस दुनिया की हमारी जिंदगी खत्म, फिर अगली जिंदगी आ रही है, उस वो जिंदगी बहुत लंबी है और बहुत ताकतवर जिंदगी है। इस वक्त हमारी जो बॉडी है वो बॉडी अगली जिंदगी में काम नहीं आ सकती, तो इस बॉडी को खत्म कर दिया जाएगा, तहलील कर दिया जाएगा, जमीन में दे दिया। आज ही आयत पढ़ी है, अल्लाह का इरशाद है, मिन्हा खलकनाकुम, जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया है, वफीहा नुईदुकुम, और इसी जमीन में हम तुम्हें वापस कर रहे हैं, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर एक मर्तबा और तुम्हें मिट्टी में से हम निकालेंगे। जैसा पहली मर्तबा तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, दूसरी मर्तबा इसी मिट्टी से निकालेंगे। लेकिन पहली मर्तबा मिट्टी से पैदा करने की शक्लें और हैं, दूसरी मर्तबा की शक्लें और हैं। पहली मर्तबा की शक्ल ये है कि ज़मीन में से खाने पीने की चीज़ें पैदा होती हैं, उसे इंसान खाता है, उस ग़िज़ाओं से खून बनता है, खून से फिर मादा बनता है, फिर दो मादे रहम मादर में पहुंचते हैं, इकट्ठा होते हैं, और उससे इंसान की बॉडी बनती है, और बॉडी बन करके एक वक्त रहकर दुनिया में आता है। क़यामत के दिन जब दोबारा जिस्म बनेगा तो इस तरह नहीं बनेगा। कुरान करीम ने जगह जगह बताया है कि दोबारा जिस्म बनेगा तो ऐसे बनेगा जैसे उजड़ी जमीन होती है, अल्लाह बारिश बरसाते हैं और आनन फानन घास उगाती है और सारा सारा जंगल भर जाता है घास से और दरख्तों से, इस तरीके से बॉडियां बनेंगी। भाई इतना ही हम समझ सकते हैं, इससे ज्यादा तफसील जब हम पैदा होंगे तब समझ में आएगा, इससे ज्यादा तफसील अभी नहीं समझ सकते। ये जिस्म हदीस शरीफ में है कि हर जिस्म 33 हाथ होगा, 33, और जब इतना लंबा होगा तो मोटा भी इतना होगा। ये थोड़ा ही है कि जैसा इस वक्त जितने हम मोटे हों ऐसे होंगे, ऐसे होंगे तो धागा बन जाएंगे हम, तो उस 33 हाथ के एतबार से मोटे भी होंगे। फिर उसके बाद में तीसरी जिंदगी शुरू होगी, ये रिजल्ट की जिंदगी है। पढ़ा, पढ़कर फील्ड में आए, अमल किया, अमल करने के बाद अब जजाओ सजा, अगर काम किया है तो तनख्वाह लो, और अगर बैठे बैठे सिगरेट पीते रहे हो, हुक्का पीते रहे हो, तो अब मुर्गा बनो। ये आयत पाक जो अभी हमारे हाफिज साहेबान ने पढ़ी है, उस आयत में ये है, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, क़यामत के दिन हम इंसाफ की तराजुएं खड़ी करेंगे। ये इंसाफ की तराजू है, ये धर्म कांटा नहीं है। धर्म कांटा जानते हो, आपके यहाँ तो पता नहीं क्या कहते होंगे, हमारे यहाँ रोड पर ट्रक वगैरह तोलने के लिए कांटा लगा हुआ होता है, उसको धर्म कांटा कहते हैं, सारी बदमाशियाँ वहाँ होती, उस धर्म कांटे में सारी बदमाशियाँ होती। आपके यहाँ भी सड़कों पर होगा कुछ, क्या कहते होंगे मुझे नहीं मालूम, और गड़बड़ बदमाशियाँ होती या नहीं होती है यहाँ ये मुझे नहीं मालूम, मैं अपने यहाँ की धर्म कांटों की बात कह रहा हूँ। तो वो अल्लाह का धर्म कांटा है, उसमें कोई गड़बड़ का कोई सवाल ही नहीं, और इंसाफ की तराजुएं होंगी, और इंसान का हर अमल, अच्छा अमल भी और बुरा अमल भी वहां तोला जाएगा। فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا پس کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. یہاں ایک مسئلہ سمجھو, گناہ معاف کر دینا یہ ظلم نہیں ہے, یہ تو کرم ہے, احسان ہے. ظلم کیا ہے؟ ناکردہ گناہ کی سزا دینا, گناہ کیا نہیں اور مرغا بنا دیا. ربی میں نے تو گناہ نہیں کیا, کیوں مرغا بنا رہے مجھے؟ دیکھو قیامت کے دن اللہ بے شمار بندوں کے گناہ معاف کر دیں گے, یہ ظلم نہیں ہے, یہ فضل ہے, کرم ہے, احسان ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی ایک گناہ تو ہرگز معاف نہیں کریں گے, وہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. اس ایک گناہ کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے اللہ کو منظور ہوگا اللہ معاف کر دیں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, ہر گنہ گار کے گناہ معاف نہیں ہو جائیں گے. اللہ کو جس بندے کے لیے منظور ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ گناہ کو معاف کر دینا یہ ظلم نہیں, یہ تو فضل و کرم ہے اور اللہ کا فضل و کرم بے حساب ہوگا. ان رحمتی وسعت کل شے, اللہ کی رحمت ہر چیز پر عام ہے, وسیع ہے, پھیلی ہوئی. مگر بعض بندے پاگل ہیں, بعض بندے پاگل ہیں, وہ کہتے ہیں ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ کس کو بخشیں گے. پاگل ہیں نہیں ہیں, ایسا کہنے والے ہیں مسلمانوں میں ہیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ کس کو بخشیں گے. اللہ غفور و رحیم ہے تو ان کی صفت غفور, ہم گناہ کریں گے جبھی تو ظاہر ہوگی. یہ پاگل بندے ہیں. کیوں پاگل ہیں؟ دیکھو جب وبا چلتی ہے کوئی, مثلا فلو آیا سائبیریا سے, سائبیریا سے آتا ہے, یہاں فلو نہیں ہوتا. جب بھی فلو آئے گا سائبیریا سے آیا, تمہارا ملک تو پوتر ہے, وہاں کوئی فلو نہیں ہے, جو فلو آیا سائبیریا سے آیا. تو کیا سارے ہی انسان فلو زدہ ہو جاتے؟ نہیں, کچھ لوگوں کو نزلہ بخار ہو جاتا ہے, بہت سو کو کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ جو بہت سو کو کچھ نہیں ہوا اس کے حق میں, ان کے حق میں فلو نہیں آیا؟ نہیں, ان کے حق میں بھی آیا. پھر ان کو نزلہ زکام بخار کیوں نہیں ہوا؟ اندر ڈیفینس کی طاقت بڑی ہوئی ہے. انسان کے اندر ایک ڈیفینس کی طاقت ہے, اس نے اس وبا کو فلو کو دھکا دے کر نہیں اندر گھسنے دیے. اور جس کے اندر ڈیفینس کی طاقت کمزور ہے اس پر وہ اس کا انفلوئنس پڑ جائے گا اور وہ متاثر ہو کر نزلہ زکام بخار ہو جائے گا. یہ قدرت کا نظام ہے کہ باہر سے چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں تو اندر سے دفع کرنے والی قوت بھی اللہ نے اندر رکھی ہے. یہ کیسے؟ اس کی مثال دے کر سمجھاؤ. دیکھو مثال دو, ایک بوری گیہوں سے بھرو بالکل ٹائٹ, ذرا بھی جگہ نہ رہے, ایسی 10 بوریاں بھرو اور ایک بوری رکھو, دوسری رکھو, تیسری رکھو, 10 بوریاں رکھو, کوئی بوری پچکے گی نہیں. جو سب سے نیچے بوری ہے اس کے اوپر تو 9 کوئنٹل آ گئے, پھر بھی پچکتی کیوں نہیں ہے؟ اندر بھری ہوئی ہے, اندر مدافعت کی طاقت ہے. اور ایک بوری آدھی بھرو اور اس سے ان 10 بوریوں کے بیچ میں رکھو, پچک کریوں ہو جائے گی. کیوں؟ اوپر کا ویٹ اس کے اوپر آیا تو وہ پچک گئی, اندر مدافعت کی طاقت نہیں. یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے. تو ہمارے اندر اگر اندر مدافعت کی ڈیفینس کی پاور بھرا ہوا ہے تو باہر کا پھول جو ہے وہ ہمیں اثر انداز نہیں ہوگا, اور اگر اندر ڈیفینس کی طاقت کمزور ہے تو وہ اثر انداز ہو جائے گا, بخار نزلہ زکام ہو جائے گا. تو کیا اس اعتماد پر کوئی زہر کھاتا ہے کہ میری ڈیفینس کی قوت پاور جو ہے وہ زہر کو دور کر دے گا؟ لاؤ زہر میں کھاتا ہوں. کوئی پاگل نہیں کھاتا, हर आदमी ये सोचता है अल्लाह जाने मेरी डिफेंस की ताकत काम करे या न करे, मैं मर जाऊं। तो जब तुम डिफेंस की पावर पर भरोसा करके जहर पॉइजन नहीं खाते हो तो इस अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके तुम क्यों गुनाह करते हो कि अल्लाह माफ कर देंगे? तुम्हें मालूम है माफी तुम्हारे हिस्से में आएगी? तुम्हारे पास कोई गारंटी पत्र लिखा हुआ है तुम्हारे पास? किसी बंदे के पास नहीं है। अल्लाह जिसके लिए चाहेंगे माफ करेंगे, वो जिसके लिए चाहेंगे उसमें तुम्हारा नंबर आएगा। उसका कोई गारंटी पत्र है तुम्हारे पास? नहीं है किसी के पास। फिर किस बिरते पर? बिरता ताकत, किस बिरते पर गुनाह कर रहा है कि हम गुनाह नहीं करेंगे? अल्लाह किसको बख्शेंगे? अल्लाह के बेशुमार बंदे हैं, जिसको बख्शना है बख्श देंगे। तेरा नंबर उनमें आएगा या नहीं आएगा तुझे क्या पता है? तो एक गुनाह तो अल्लाह माफ नहीं करेंगे, बाकी जो गुनाह जिस बंदे के लिए चाहेंगे वो माफ कर देंगे। फिर जुल्म क्या है? जुल्म दो चीजों का नाम है। एक, नेकी की उसका अज्र नहीं दिया, ये जुल्म है। जब बेचारे ने 8 घंटे काम किया तो उसका वेजेस क्यों नहीं देते? क्यों उसकी तनख्वाह मार ली? ये जुल्म है। अल्लाह की बारगाह में ये जुल्म नहीं है कि कोई ने किसी ने नेक काम किया और अल्लाह उसका अज्र न अता फरमाए, ये नहीं हो सकता है। इन्ना अल्लाह ला युज़ी वो अजरल मोहसिनीन, नेकोकारों का अजर अल्लाह ताला जाये नहीं करते। दूसरा जुल्म किस चीज का नाम है? ना करदा गुना की सजा दी जाए, गुना किया नहीं और सजा मिल गई। ये दो जुल्म है, ये अल्लाह की बारगाह में नहीं है। तो इंसाफ की तराजुएं रखी जाएंगी, पूरे इंसाफ के साथ आमाल तुलेंगे। जिसने जो अजर किया है उसका पूरा सवाब मिलेगा। और सुनो मेरे भाइयों, अजर किया था, नेक काम किया था, दुगना तिगना 10 गुना बदला दे दिए, ये भी जुल्म नहीं, ये भी कर्म है और एहसान है। ये कर्म और एहसान अल्लाह के बेहिसाब आखिरत में होंगे। अमल से ज्यादा सवाब देना या गुनाह को माफ करना, ये दो बातें जुल्म में नहीं है। गुनाह माफ कर देना ये जुल्म नहीं है, और नेक अमल का सवाब अमल से ज्यादा देना ये भी जुल्म नहीं है। जुल्म दो बातों का नाम है, किए हुए नेक अमल का सवाब न दिया जाए या न किए हुए गुनाह की सजा दे दी जाए, ये दो जुल्म है। ये दो जुल्म अल्लाह की बारगाह में नहीं होंगे, और फजलो इनाम और करम अल्लाह का बेहिसाब दरिया बहेंगे। तो फरमाया कि وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ اگر کسی کا اچھا عمل یا برا عمل رائے کے دانے کے برابر، رائے جو اچار میں ڈالتے ہیں، رائے کے دانے کے برابر اگر اچھا عمل یا برا عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عمل کو ہم لا کر حاضر کریں گے ترازو میں۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ بھر، ذرہ کیا چیز ہے؟ ذرہ روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو یہاں، اور آپ قالین کے اوپر ہاتھ ماریں تو تھوڑی دیر کے بعد دھوپ کے اندر سے چھوٹے چھوٹے ذرے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے، آنکھ سے نظر نہیں آ رہے، وہ دھوپ میں سے پاس ہوتے ہیں تب نظر آتے ہیں، یہ ذرے ہیں۔ اتنے غیر مرئی، عام طور پر وہ اس کا وجود نظر بھی نہ آئے، خوردبین سے نظر آئے یا دھوپ میں سے پاس ہو تب نظر آئے، اتنا ذرا سا بھی عمل کسی نے اچھا یا اچھا عمل کیا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرے کے برابر برا عمل کیا ہے تو وہ بھی قیامت کے دن سامنے آنے والا ہے۔ इन आयतों का सबक क्या है? इन आयतों का सबक ये है कि हर नेकी का काम करो, छोटे से छोटा नेकी का काम है करो। रास्ते में चल रहे हो, कोई चीज ऐसी पड़ी हुई है जो किसी गुजरने वाले को तकलीफ पहुंचाएगी, ब्लड पड़ा है, कांच पड़ा है, केले का छिलका पड़ा है, कांटा पड़ा है, उसे हटाकर दूर करो। हदीस शरीफ में है कि एक रास्ते में कांटेदार टहनी थी, किसी ने काट के डाली होगी या काट कर डाली नहीं होगी, वो दरख्त ही ऐसा होगा कि वो कांटेदार टहली दरख्त रास्ते में आ गई, तो एक बंदे ने वो कांटेदार टहनी वहां से दूर कर दी। काट के डाली थी तो उठा करके एक तरफ डाली, या दरख्त का शाख ही उधर आई है तो उसने वो शाख काट करके वो कांटेदार टहनी दूर कर दी। तो हदीस शरीफ में है अल्लाह ताला ने उसको जजाए खैर दी और इतने अमल पर उसकी बख्शिश कर दी। लिहाजा मेरे भाइयों, किसी छोटे से छोटे नेक काम को ऐसा मत समझो कि ये छोटा काम है, पता नहीं कल आड़े वक्त में कौन सा काम आ जाए और उससे बख्शिश हो जाए। और मेरे भाइयों, बुराई, हर बुराई से बचो, चाहे वो छोटी से छोटी हो। देखो, किसी घास के ढेर को फूंकने के लिए एक चिंगारी काफी है। एक चिंगारी घास के ढेर में डाल दो, सारे घास को फूंक देगी। तो चिंगारी को हमेशा चिंगारी समझो, अरे छोटी सी है, छोड़ो, पड़े रहने दो, नहीं वो तू पूरे घर को जला देगी। तो बुराई को बुराई समझो, छोटी से छोटी बुराई को बुराई समझो, हर बुराई से बचो, मालूम नहीं कल कौन सी बुराई इनसे नाश पीट जाए। हदीस शरीफ में है कि एक औरत ने एक बिल्ली को परेशान करती होगी, रोज आकर दूध पी जाती होगी, तो उसने उस बिल्ली को बांध दिया। वो बिल्ली बिचारी भूखी प्यासी बंधी हुई मर गई। अल्लाह ने सिर्फ इस गुनाह की वजह से उस औरत को जहन्नम में डाल दिया। हुजूर ने फरमाया कि न तो उसने बिल्ली को छोड़ा कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खाती, और न उसने खिलाया, वो बेचारी बंधी बंधी भूखी मर गई। तो अल्लाह ताला ने उसकी सजा में उस औरत को जहन्नम में भेज दिया। तो छोटे से छोटा गुना जहन्नम में ले जा सकता है, और छोटी से छोटी नेकी अल्लाह के यहां ले जा सकती है। तो फरमाया व इन कान मिसकाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, अगर राय के दाने बराबर भी अमल होगा अच्छा या बुरा हम लाएंगे। इतना बारीक अमल कौन ला सकेगा? वह कफा बेना हासिबीन, अल्लाह फरमाते हैं जानते हो कौन हिसाब ऑडिट कर रहा है? हम कर रहे हैं। ये जर्रे तो अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, हर जर्रा अल्लाह का पैदा किया हुआ है। फिर उस जर्रे को मीजान अमल में, तराजू में ले आना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? माओशुमा के लिए तो मुश्किल है, उस जर्रे पर हमारी हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जिसने उस जर्रे को पैदा किया है उसके लिए उसको पकड़ करके मीजान अमल में लाना क्या मुश्किल है? ये आयत करीमा आज पढ़ी गई है, क्या अगली जो जिंदगी है तो अमल की जिंदगी है। यहां अगर किसी गुनाह की थोड़ी बहुत सजा मिलती है तो वो पूरी सजा नहीं। और अगर काफिर को अगर किसी गुनाह की थोड़ी बहुत सजा मिलती हो, पूरी सजा नहीं, लेकिन मोमिन को बाज गुनाहों की सजाएं इसी दुनिया में सजाएं देकर किस्सा निमटा दिया जाता है, लेकिन काफिर का किस्सा नहीं निमटता। और नेकी का, अगर किसी नेकी की थोड़ी बहुत सवाब दे दिया जाए तो वो देख के चंद चावल चखा दिए जाते हैं। नेकी का अजर अगली जिंदगी में है, जब ये जिंदगी ऑफ होकर दूसरी जिंदगी शुरू होगी और तराजू, इंसाफ की तराजू खड़ी की जाएगी, और उसके बाद जो फैसले होंगे, दो ही घर हैं, जन्नत और जहन्नम। अच्छे काम ईमान वाले और अमल साले करने वाले जन्नत में जाएंगे, बुराई करने वाले कुफ्र शिर्क में मुब्तिला और गुनाहों में मुब्तिला जिनके गुनाह माफ नहीं हुए या उनका मामला अभी नहीं निमटा वो उसके लिए जहन्नम में डाले जाएंगे। ये सब अगली जिंदगी है और फिर वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। जन्नत की जिंदगी भी हमेशा की है, जहन्नम की जिंदगी भी हमेशा की है। यहाँ एक सवाल है कि ये हमेशा की जजा और सजा क्यों है? कौन सा अमल? अमल दो हैं, एक शिर्क है और एक उसके साथ गुना है, एक ईमान है और एक उसके साथ आमाले सालेहा है। नमाज पढ़ने हम खड़े हुए, पांच मिनट के बाद सलाम फेर दिया, नमाज पूरी हो गई। जकात हमने दे दी, माल में से निकाल कर दे दिया, अमल खत्म हुआ। सुबह से रोजा रखा, शाम को इफ्तार कर लिया, रोजा खत्म हुआ, अमल कंटिन्यूस कोई नहीं चलता। लेकिन ईमान कंटिन्यूस रहता है। एक लम्हे भी ईमान हमारे अंदर से खत्म हुआ बेड़ा गर्क। मेरे भाइयों, इसी तरह गुना कंटिन्यूस नहीं है लेकिन कुफ्र शिर्क कंटिन्यूस है। जन्नत दर हकीकत ईमान का सेला है और जहन्नम दर हकीकत कुफ्र शिर्क का सेला है। और ईमान कंटिन्यूस है तो जन्नत भी सेला कंटिन्यूस है, और कुफ्र और शिर्क कंटिन्यूस है तो जहन्नम भी कंटिन्यूस है। असल ये सेला जो जन्नत है वो ईमान का है। चुनांचे वो मोमिनीन जो गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे, क्योंकि नेक अमल भी कंटिन्यूस नहीं है और गुना भी कंटिन्यूस नहीं है। जितना गुना उतनी सजा पाने के बाद फिर वो जन्नत में आएंगे क्योंकि उनमें ईमान है और ईमान कंटिन्यूस है। लिहाजा इस बात को जहन में साफ करो। इस मुल्क में बहुत से लोगों के जहनों में खलजान रहता है, तो इस मसले को साफ रहो कि ईमान दर हकीकत सेला अस्तग़फिरुल्लाह, जन्नत दर हकीकत सेला ईमान का है, अमल का नहीं। देखो एक आदमी ने ईमान कबूल किया, सच्चा पक्का ईमान, एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा और फौरन मौत आ गई और मर गया हमेशा के लिए जन्नत में, कोई अमल नहीं किया। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला उस बंदे को बड़ा ही पसंद करते हैं कि जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ जन्नत में चला जाता है। बेड़ियों में जकड़ा हुआ कैसे जन्नत में गया? वॉर में मुसलमानों ने एक काफिर को कैद किया, वो मुसलमानों के कब्जे में आया, इस्लामी सोसाइटी देखी, अल्लाह ने उसके सीने को खोल दिया, ईमान लाया, ईमान लाने के बाद फौरन ही उनका इंतकाल हो गया, कोई अमल नहीं किया और हमेशा के लिए जन्नत में जाएगा। इस मिसाल से मालूम हुआ कि जन्नत सेला दर हकीकत ईमान का है और जहन्नम अबदी जहन्नम भी सेला दर हकीकत कुफ्र शिर्क का है। और ईमान कंटिन्यूस है, कुफ्र शिर्क कंटिन्यूस है, और गुना कंटिन्यूस नहीं है। इसलिए मोमिन जो गुनहगार है वो बहरहाल जहन्नम में से निकल कर जन्नत में आएगा, और काफिर जो हमेशा जहन्नम में रहेगा तो गुना की वजह से नहीं, कुफ्र शिर्क की वजह से। और कुफ्र शिर्क एक रॉन्ग बिलीफ है, जैसे ईमान एक राइट बिलीफ है और वो कंटिन्यूस है, ऐसे वो रॉन्ग बिलीफ है वो भी कंटिन्यूस है। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।